एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर तरफ सुनाई देता है, डेटा साइंस।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारी गाइड होंगी जॉन डी केलेहर और ब्रेंडन टियर्नी की किताब डेटा साइंस। ये MIT प्रेस एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
हाँ, तो डेटा साइंस ये शब्द सुनने में थोड़ा क्या कहते हैं, भारी भरकम लग सकता है ना, जैसे सिर्फ वैज्ञानिकों या कंप्यूटर के महारथियों के काम की चीज हो।
हाँ, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आज हम डेटा से इस कदर घिरे हैं, मतलब सुबह उठने से लेके रात सोने तक, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, रास्ते ढूंढना, हर जगह डेटा बन रहा है, इस्तेमाल हो रहा है।
सही बात है।
तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये डेटा साइंस आखिर है क्या, इसका असल मकसद क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, और इसमें जो लोग काम करते हैं या इसे समझना चाहते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है।
बिल्कुल सही कहा। और ये किताब इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, बल्कि ये समझाने की कोशिश है कि कैसे डेटा का इस्तेमाल करके हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, चाहे वो व्यापार में हो या हमारी अपनी जिंदगी में।
तो चलिए पहले इन लेखकों से मिलते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, जॉन डी केलेहर और ब्रेंडन टियर्नी। क्या खास है इनके बारे में?
देखिए, ये जोड़ी बड़ी दिलचस्प है। जॉन डी केलेहर जो है वो एक अकेडमिक शख्सियत है। डब्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अब टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डब्लिन है, वहाँ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
उनकी स्पेशलिटी है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल AI कॉन्सेप्ट्स को भी आसान बना देते हैं, तो वो इस विषय की गहरी मतलब सैद्धांतिक समझ लाते हैं।
और दूसरे हैं ब्रेंडन टियर्नी।
हाँ, ब्रेंडन टियर्नी वो बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। एक अनुभवी इंडस्ट्री कंसल्टेंट हैं जिन्हें डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स में दशकों का आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल अनुभव है। वो कंपनियों के साथ काम करते हैं, उनकी डेटा से जुड़ी समस्याएं सुलझाते हैं, तो उन्हें पता है कि असल दुनिया में क्या चलता है, क्या चुनौतियां आती हैं।
अच्छा, तो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का संगम।
बिल्कुल, और यही तालमेल इस किताब को खास बनाता है। एक तरफ केलेहर की अकेडमिक गहराई, दूसरी तरफ टियर्नी का वो जमीनी अनुभव। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान का संगम है। ये किताब सिद्धांत और अमल के बीच एक पुल का काम करती है। ये दिखाती है कि डेटा साइंस की दुनिया में थियोरी और प्रैक्टिस कैसे साथ साथ चलते हैं।
तो किताब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या बताना चाह रही है ये?
देखिए, किताब का मुख्य उद्देश्य है डेटा साइंस को एक रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स समझने की जो गलती होती है उससे बचाना।
ओके।
ये कहती है कि डेटा साइंस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित, एक डिसिप्लिन प्रोसेस है।
अच्छा।
ये सिर्फ कोड लिखना या एल्गोरिथम चलाना नहीं है।
तो फिर क्या है, अगर सिर्फ तकनीक नहीं तो और क्या शामिल है इसमें?
इसमें कई चीजें मिलती हैं। कंप्यूटर विज्ञान तो है ही, जाहिर है, साथ में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, फिर जिस विषय का डेटा है उसकी समझ जिसे डोमेन एक्सपर्टीज कहते हैं, और सबसे अहम क्रिटिकल थिंकिंग,
आलोचनात्मक सोच।
हाँ, इन सबको मिलाकर डेटा से मतलब की जानकारी यानी ज्ञान निकालने की कोशिश की जाती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये एक मानव चालित प्रक्रिया है। मशीनें मदद करती हैं, पर दिमाग तो इंसान का ही लगता है।
मतलब डेटा वैज्ञानिक की भूमिका सिर्फ टूल चलाने वाली की नहीं है, वो एक विचारक और प्रॉब्लम सॉल्वर भी है।
बिल्कुल, यही उसका रोल है। और किताब ये भी कहती है कि इसकी सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ।
अच्छा, तो किस पर करती है?
बल्कि इस पर कि डेटा कितना अच्छा है, सवाल कितना स्पष्ट पूछा गया है, मतलब लक्ष्य क्या है, और नतीजों को कितनी सावधानी से समझा और समझाया गया है। ये उन सबके लिए है जो इस विषय को समझना चाहते हैं, चाहे उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि हो या ना हो। ये डेटा लिटरेसी बढ़ाने में मदद करती है।
चलिए अब इस प्रक्रिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आपने कहा कि ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, किताब इसके बारे में क्या बताती है?
हाँ, किताब CRISP-DM जैसे ढांचे का जिक्र करती है। CRISP-DM यानी क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। ये डेटा साइंस प्रोजेक्ट करने का एक जाना माना स्टैंडर्ड तरीका है।
ओके।
इसके कुछ मुख्य चरण हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब इसके लक्ष्य और रास्ते को समझने में मदद करते हैं।
क्या है वो चरण,
जरा विस्तार से बताएं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है व्यावसायिक समझ यानी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। असल में हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर यही साफ नहीं है तो आगे की सारी मेहनत, आप समझ लीजिए, बेकार जा सकती है।
ये तो किसी भी काम के लिए जरूरी है, लक्ष्य पता होना ही चाहिए। इसके बाद
आता है डेटा समझना, डेटा अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास क्या डेटा है, कहाँ से आया है, क्या ये पूरा है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, डेटा को जानना बहुत जरूरी है।
फिर आता होगा डेटा को ठीक ठाक करना, साफ करना।
बिल्कुल, तीसरा चरण है डेटा तैयारी, डेटा प्रिपरेशन। और सुनिए, ये अक्सर सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला हिस्सा होता है।
सच में?
हाँ, किताब इस पर बहुत जोर देती है। इसमें डेटा की सफाई, अलग अलग सोर्स से मिले डेटा को जोड़ना, उसे सही फॉर्मेट में लाना, ये सब शामिल है। यहाँ वो कहावत सच होती है, कचरा अंदर तो कचरा बाहर।
हाँ हाँ बिल्कुल।
अगर डेटा ही ठीक नहीं तो बढ़िया से बढ़िया विश्लेषण भी गलत नतीजे देगा। कहते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का 80% तक समय इसी में लग जाता है।
80%? अरे बाप रे, ये तो मतलब ग्लैमरस काम नहीं लगता फिर, जितना समझा जाता है।
हाँ, असलियत यही है। इसके बाद क्या होता है?
बताइए।
इसके बाद आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग, यहाँ पर सही एनालिटिक्स तकनीक या मशीन लर्निंग मॉडल चुना जाता है और उसे तैयार डेटा पर लागू किया जाता है। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है ना?
हाँ बिल्कुल।
लेकिन ये पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है।
मॉडल बन गया फिर?
फिर आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब ये परखना होता है कि जो मॉडल बना है वो काम का है भी या नहीं, क्या वो हमारे शुरुआती लक्ष्य को, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, क्या उसके नतीजे भरोसेमंद है। यहां बारीकी से जांच पड़ताल होती है।
और अगर मॉडल जांच में खरा उतरता है तब?
तब आता है आखिरी चरण, तैनाती।
डिप्लॉयमेंट।
मॉडल को असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए उतारा जाता है ताकि उससे फैसले लिए जा सकें या किसी प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई सीधी रेखा नहीं है, अक्सर आपको स्टेप्स के बीच आगे पीछे जाना पड़ता है।
अच्छा, मतलब वापस भी जाना पड़ सकता है।
हाँ बिल्कुल। मूल्यांकन के बाद शायद लगे कि डेटा तैयारी में कुछ कमी थी, या मॉडलिंग के बाद लगे कि सवाल ही ठीक से नहीं समझा था। ये एक तरह का चक्र है, आइटरेटिव प्रोसेस।
ये प्रक्रिया समझना वाकई मददगार है। ये दिखाता है कि डेटा साइंस सिर्फ कोड चलाने से कहीं ज्यादा है। अब आपने मॉडलिंग और मशीन लर्निंग का जिक्र किया, किताब इसे कैसे समझाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक एक्सपर्ट नहीं है?
किताब इसे बहुत सरल तरीके से समझाती है। मुख्य रूप से दो तरह की मशीन लर्निंग की बात होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
इनके नाम तो सुने हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है?
सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप मशीन को उदाहरणों के साथ सिखाते हैं, आप उसे डेटा देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हर उदाहरण का सही जवाब या लेबल क्या है।
जैसे
हजारों ईमेल देकर बताना कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नहीं। मशीन इन उदाहरणों से सीखती है और फिर नए अनदेखे ईमेल को पहचानने की कोशिश करती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, एक है क्लासिफिकेशन, जहां नतीजा एक कैटेगरी होती है, जैसे स्पैम नॉट स्पैम, और दूसरा है रिग्रेशन, जहां नतीजा एक संख्या होती है, जैसे घर की कीमत का अनुमान।
ठीक है, ये समझ आया। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग?
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप मशीन को बिना लेबल वाला डेटा देते हैं और उसे कहते हैं जाओ इसमें खुद ही कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर ढूंढो, उसे कोई सही जवाब नहीं बताया जाता।
अच्छा, मतलब मशीन खुद ही समझती है।
हाँ, जैसे ग्राहकों के डेटा को देखकर मशीन खुद ही उन्हें मिलते जुलते ग्रुप्स में बांट सकती है, इसे क्लस्टरिंग कहते हैं, या डेटा में चीजों के बीच छिपे रिश्तों को ढूंढ सकती है, जैसे वो मशहूर किस्सा।
हाँ हाँ, वो डायपर और बियर वाला।
हाँ हाँ बिल्कुल।
कि सुपरमार्केट डेटा में पता चला कि डायपर खरीदने वाले अक्सर बियर भी खरीदते हैं।
हाँ।
इसे एसोसिएशन रूल माइनिंग कहते हैं।
हाँ हाँ।
ये दिखाता है कि डेटा में कैसे अनपेक्षित कनेक्शन मिल सकते हैं। तो किताब का मकसद ये समझाना है कि कौन सी तकनीक किस काम आती है, उसकी भूमिका क्या है, ना कि गणित में उलझाना।
बिल्कुल, लक्ष्य है रोल और पर्पस को समझना, किस तरह की प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल सही रहेगा।
अच्छा, मान लीजिए हमने मॉडल बना लिया, सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड। फिर आपने मूल्यांकन की बात की थी, ये क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है? सिर्फ ये देख लेना काफी नहीं कि मॉडल चल रहा है?
नहीं, बिल्कुल काफी नहीं, ये बहुत जरूरी कदम है। हमें ये पक्का करना होता है कि मॉडल सिर्फ रट्टा मारकर उन्हीं उदाहरणों पर अच्छा काम नहीं कर रहा जिन पर उसे सिखाया गया था, बल्कि वो नए अनदेखे डेटा पर भी सही नतीजे देगा। यहीं पर ओवरफिटिंग का खतरा आता है।
ओवरफिटिंग ये क्या होता है?
ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतनी बारीकी से रट लेता है, उसकी हर छोटी मोटी बात, यहां तक कि उसमें जो शोर या नॉइज है उसको भी, कि वो असल दुनिया के थोड़े अलग डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता।
अच्छा,
ये उस छात्र की तरह है जो परीक्षा के लिए गाइड के सवाल जवाब तो रट ले, लेकिन अगर सवाल जरा सा घुमाकर पूछ लिया जाए तो जवाब ना दे पाए क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा।
वाह, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं?
एक आम तरीका है डेटा को दो हिस्सों में बांटना, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट। मॉडल को ट्रेनिंग सेट पर सिखाया जाता है और फिर उसकी असली परीक्षा टेस्टिंग सेट पर होती है जो उसने पहले नहीं देखा था। इससे पता चलता है कि मॉडल असल में कितना सीख पाया है।
और उसके प्रदर्शन को नापते कैसे हैं? क्या तरीके हैं?
उसके लिए कई मापदंड या मेट्रिक्स होते हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल वगैरह। ये हमें बताते हैं कि मॉडल कहाँ सही है, कहाँ गलत और कितना भरोसेमंद है। मूल्यांकन ये सुनिश्चित करता है कि मॉडल अपने लक्ष्य को, अपने पर्पस को हासिल करने में सक्षम है या नहीं।
ये सब तो प्रक्रिया और तकनीक की बातें हुई, लेकिन आजकल डेटा और एल्गोरिदम से जुड़े नैतिक सवालों पर भी बहुत चर्चा होती है। क्या किताब इस पहलू पर भी बात करती है?
हाँ, और ये किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक साफ कहते हैं कि डेटा विज्ञान कोई न्यूट्रल चीज नहीं है, इसके सामाजिक और नैतिक परिणाम होते हैं और डेटा विज्ञानियों की इसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये उनके काम की भूमिका, उनके रोल का एक अहम पहलू है।
किस तरह के नैतिक मुद्दे? कुछ उदाहरण देंगे?
जैसे एल्गोरिथम बायस, यानी एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह। अगर आप मशीन को ऐसे डेटा पर सिखाते हैं जिसमें पहले से ही सामाजिक भेदभाव या पूर्वाग्रह मौजूद हैं,
जैसे
भर्ती प्रक्रिया में लिंग या जाति के आधार पर ऐतिहासिक भेदभाव रहा हो, तो मशीन भी वही पैटर्न सीख लेती है और उसे और पक्का कर देती है। अनजाने में ही सही, पर ऐसा हो सकता है।
ये तो वाकई चिंता की बात है। और गोपनीयता, प्राइवेसी?
बिल्कुल, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा सवाल है। लोगों का अपने निजी डेटा पर कितना नियंत्रण होना चाहिए, कंपनियां या सरकारें उस डेटा का कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। यूरोप का जो GDPR कानून है वो इसी दिशा में एक कदम है। किताब इन सवालों को उठाती है और सोचने पर मजबूर करती है।
और पारदर्शिता, क्या हम हमेशा समझ सकते हैं कि कोई एल्गोरिदम किसी खास नतीजे पर क्यों पहुंचा?
ये भी एक अहम मुद्दा है, जिसे एक्सप्लेनेबिलिटी कहते हैं। कई बार मशीन लर्निंग मॉडल ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, वो नतीजा तो दे देते हैं पर ये बताना मुश्किल होता है कि क्यों।
हाँ, ये सुना है।
ये तब और गंभीर हो जाता है जब फैसला किसी व्यक्ति की जिंदगी पर असर डालता हो, जैसे लोन मिलना या ना मिलना। फिर अकाउंटेबिलिटी का सवाल आता है, अगर एल्गोरिदम से गलती होती है तो जिम्मेदार कौन है। किताब कहती है कि नैतिक पहलुओं पर विचार करना डेटा साइंस प्रक्रिया का और डेटा साइंटिस्ट की भूमिका का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
ये सारी चर्चा बहुत दिलचस्प रही है। अगर हमें इस किताब से कुछ मुख्य संदेश या सीख निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी सीख है प्रक्रिया का महत्व। डेटा साइंस सिर्फ एक टूलकिट नहीं है, एक व्यवस्थित सफर है जिसके अपने पड़ाव हैं, अपने एक लॉजिक है।
दूसरी बात जो मुझे अहम लगी वो है सवाल की प्रधानता। सही सवाल पूछना, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ये तकनीक चुनने से भी ज्यादा जरूरी है। मतलब व्हाट इज द गोल?
हाँ बिल्कुल। तीसरी, और ये बार बार दोहराई गई है, डेटा गुणवत्ता सर्वोपरि है। कचरा अंदर, कचरा बाहर, अच्छे डेटा के बिना सब बेकार। डेटा तैयारी में मेहनत लगती है पर वो जरूरी है।
चौथी सीख है मानवीय तत्व। ये सिर्फ मशीनों का खेल नहीं है। विषय का ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और अपनी बात दूसरों को समझा पाना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत जरूरी हैं। इंसान इस प्रक्रिया के केंद्र में है, उसकी भूमिका अहम है।
और पांचवीं, जो मानवीय तत्व से ही जुड़ी है, वो है संचार और कहानी सुनाना। डेटा से जो नतीजे निकलते हैं उन्हें इस तरह पेश करना कि लोग समझ सकें और उन पर एक्शन ले सकें। डेटा को कहानी में बदलना।
किताब में कुछ ऐसे विचार भी हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं। कोई यादगार पंक्ति या विचार जो आपको खास लगाओ?
हाँ, एक विचार है कि डेटा विज्ञान का लक्ष्य मानव निर्णय को प्रतिस्थापित करना नहीं बल्कि उसे बढ़ाना है। ये बताता है कि ये तकनीक हमारी मदद के लिए है, हमारी जगह लेने के लिए नहीं। ये इंसान की क्षमताओं को और बेहतर बनाने का एक जरिया है।
मुझे ये चेतावनी भी बहुत महत्वपूर्ण लगी, संदर्भ के बिना डेटा सिर्फ शोर है, यानी सिर्फ नंबर देखने से काम नहीं चलता। ये जानना जरूरी है कि वो नंबर कहाँ से आए, किस माहौल में इकट्ठा हुए, तभी उनका सही मतलब समझ आता है।
और एक बहुत शक्तिशाली विचार कोरिलेशन और कॉजेशन को लेकर है, सहसंबंध और कार्यकारण संबंध। किताब आगाह करती है कि डेटा विज्ञान में सबसे खतरनाक वाक्य है सहसंबंध का अर्थ कार्य कारण संबंध है।
अच्छा,
सिर्फ इसलिए कि दो चीजें साथ हो रही हैं, ये मतलब नहीं कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, वरना हम गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं।
ये सब ज्ञान सुनने में तो अच्छा है, पर इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? हमें समझ का क्या कर सकते हैं?
देखिए, व्यापार जगत में तो इसका सीधा फायदा है। मैनेजर्स डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स को बेहतर समझ सकते हैं, सही सवाल पूछ सकते हैं, सही लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, नतीजों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, हर जगह इसका उपयोग है।
और व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए?
व्यक्तिगत स्तर पर हम ज्यादा जागरूक नागरिक और उपभोक्ता बन सकते हैं। जब हम खबरों में या विज्ञापनों में आंकड़े देखते हैं, तो हम ज्यादा क्रिटिकल नजर से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कोरिलेशन हमेशा कॉजेशन नहीं होता। हम ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि ऑनलाइन हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, चाहे वो खरीदारी की सिफारिशें हों या न्यूज फीड, वो कैसे तय होती हैं, उनका लक्ष्य क्या है। ये सब डेटा साइंस का ही कमाल है।
यानी ये हमें डिजिटल दुनिया को नेविगेट करने में मदद करता है। और समाज के स्तर पर?
समाज के स्तर पर ये हमें सार्वजनिक सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम पर सवाल उठाने की ताकत देता है। क्या वो निष्पक्ष हैं? क्या उनमें पारदर्शिता है? जब हम मूल बातें समझते हैं, तो हम बेहतर सवाल पूछ सकते हैं और जवाबदेही की मांग कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख या सबसे यादगार पहलू क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि डेटा साइंस सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है, एक अप्रोच है। इसमें प्रक्रिया है, गुणवत्ता पर ध्यान है, विषय की समझ है, इंसानी सूझबूझ है और संवाद है। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी क्षेत्र है।
और मेरे लिए सबसे यादगार पहलू है मानवीय तत्व पर जोर। तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, आखिर में इंसान की समझ, उसकी आलोचनात्मक सोच और उसकी नैतिक जिम्मेदारी ही मायने रखती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि डेटा एक शक्तिशाली साधन है और शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। डेटा साइंटिस्ट की ये भूमिका बहुत अहम है।
हाँ, और शायद इस चर्चा के बाद हम सब ये सोच सकते हैं कि हम रोज किन एल्गोरिदम्स का सामना करते हैं, सोशल मीडिया फीड, शॉपिंग रिकमेंडेशंस, मैप्स, और उनका लक्ष्य क्या हो सकता है। क्या वो हमारे लिए बने हैं या किसी और के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं? ये सोचना भी डेटा साक्षरता की ओर एक कदम है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।